मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं उत्तर लेखन पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो कुछ दूसरी खबरें हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, कल न्यूज़ में भी ये बात थी। खासकर जो आईएसआईएस है, उसका एक आतंकी रूस में पकड़ा गया और ये भारत में एक बड़ी खबर बनी। आप थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं कि रूस में पकड़ा गया और भारत में खबर कैसे बनी। रूस की जो एजेंसी है, उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसने ये कहा कि ये जो इस्लामिक स्टेट है, यह उसका एक आतंकी है और उसकी योजना थी कि ये रूस के रास्ते होता हुआ भारत जाएगा और भारत जाकर यह किसी एक बहुत बड़े नेता के खिलाफ आत्मघाती हमला करेगा। वो नेता कौन हो सकते हैं, कौन थे, उसका नाम सामने नहीं आया है। भारत के लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। रूस की एजेंसी ने यह भी बताया कि ये जो आतंकी है, ये मध्य एशिया से आया हुआ है। नाम फिर अखबारों में आया कि टर्की, जिसे हम अब तुर्की कहते हैं, वहां इसका प्रशिक्षण हुआ है और इस तरीके से वो रशिया के रूट से होता हुआ भारत प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन इस बीच में वो पकड़ लिया गया। मैं जानबूझकर इस घटना के डिटेल्स की बात कर रहा हूं। पहली बात कि जो आईएसआईएस है, आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेनी चाहिए। जब हम कहते हैं आईएसआईएस, तो यह है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये बेसिकली ये मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है। मिलिटेंट है, अपने को सैन्य ग्रुप कहता है, लेकिन बेसिकली ये आतंकवादी ग्रुप है। इस संगठन की जो स्थापना की गई थी, वो 1999 में की गई थी। शुरू में तो ये धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन बाद में, खासकर 2014 तक पहुंचते पहुंचते, इसका फैलाव काफी हो गया और अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जगह जगह पर मौजूद है। थोड़ी सी जानकारी आईएसआईएस के बारे में, यानी कि यह एक इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप है। जब मैं कह रहा हूं इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप, तो देखिए उसका मतलब यही होता है कि इस्लाम धर्म का सहारा लेकर के और दुनिया में आतंक फैला करके और उस पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां जो टर्की की बात आई है, उसके बारे में आपको, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो टर्की है, बेसिकली वहां अभी राष्ट्रपति हैं एदोरगन। एदोरगन वहां के राष्ट्रपति हैं और बेसिकली उनके सत्ता में आने के बाद से जो टर्की है, वहां धार्मिक कट्टरतावाद बढ़ा है। इसीलिए टर्की अभी भी भारत के विरोध में आ जाता है। जब अगर आपको ध्यान होगा, थोड़े से लंबे समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब टर्की ने इसका विरोध किया था और एक तरह से पाकिस्तान का साथ दिया था। इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, उसके आधार पर यहां मुझे लगता है कि यह भी आपको जान लेना चाहिए कि वो जो पूरा का पूरा मध्य एशिया वाला जो हिस्सा है, जिसे पश्चिम एशिया भी कहा जाता है, उसमें जो टर्की है और जो सऊदी अरब है, इन दोनों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। सऊदी अरब तो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, एक तरह से कह लीजिए कि वहां उसका वर्चस्व है। टर्की ये चाहता है कि इसकी जगह पर मैं अपना वर्चस्व स्थापित करूं, और इस बात के लिए भी वो थोड़ा सा परेशान है कि किस तरह से वो जो इस्लामिक दुनिया है, उसका वो नेतृत्व करे। तो इसीलिए टर्की भारत के पक्ष में नहीं दिखाई देगा। आपको कभी कभी इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टर्की हमारा उतना अच्छा मित्र नहीं है। और चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में, चलिए, बहुत स्पष्ट शत्रु और मित्र की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब भी इस्लाम की बात आती है, तो भारत के साथ आपको कभी भी खड़ा दिखाई नहीं देगा। तो वहां इस आतंकी का प्रशिक्षण हुआ था, इसके बाद रशिया से होता हुआ वो भारत आ रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आईएसआईएस ग्रुप है, वो धीरे धीरे, आप देखिए कि कहां तक, किस तरीके से वो पहुंच रहा है। मतलब रशिया में भी धीरे धीरे उसके अड्डे तैयार होने, तभी तो वहां पहुंचा, और इसके बाद भारत में भी अगर वो आ रहा था, तो डेफिनेटली यहां तो उसके कुछ ना कुछ इस तरह के लोग होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे। और कुछ समय पहले आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि किस तरह से केरल, कर्नाटक और देश के दूसरे हिस्सों में भी बाकायदे इस्लामिक स्टेट के कई आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो अफगानिस्तान जाने वाले थे। कुछ ही दिनों की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आतंकी स्थितियां हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा वाले चैप्टर में मायने रखती हैं। चूंकि ये लेटेस्ट घटना है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अब देखते हैं इस पर आपको आगे और भी कुछ पढ़ने को मिलेगा, किस तरीके की बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो आपको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। फुटबॉल फेडरेशन के बारे में आप जानते हैं, पहले हम लोगों ने बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक अच्छा काम यह किया कि इसकी जो समिति थी, 3 सदस्यीय समिति, उसे भंग कर दिया है और इस फेडरेशन का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो उसके महासचिव हैं सेक्रेटरी जनरल, उनको सौंप दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मतलब रिक्वेस्ट की थी कि यदि ऐसी स्थिति आ जाएगी तो शायद फीफा अपने निर्णय को रिकंसीडर करे, और खासकर हमारे यहाँ जो महिला अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल होना था उसकी मेजबानी बच जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये जो घटना है, देखिए अगर खेल से संबंधित कोई प्रश्न आता है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर संभव हो सके तो आपको इस तरह की लेटेस्ट जो घटनाएं होती हैं उन्हें शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय में मैंने चुना है उत्तर लेखन। कल मैंने आप सबसे इसके बारे में बात की थी। मैंने शनिवार को आप लोगों को 2 प्रश्न दिए हैं 100-100 वर्ड्स में लिखने के लिए। उसमें जो पहला प्रश्न है मैं आज उसी पर बात करूंगा और इत्मीनान से बात करूंगा। हड़बड़ी की आदत मुझ में नहीं है। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा बेचैन हो जाएं कि जल्दी से सर अपनी बात खत्म क्यों नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी वैसी आदत नहीं है। प्रश्न क्या था? सबसे पहले जो जरूरत होती है याद रखिए उत्तर लिखने से पहले, कि आप प्रश्न जो दिया गया है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। 99.9% स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि उन्हें इस बात का बहुत ही जबरदस्त भ्रम होता है कि एक बार उन्होंने प्रश्न पढ़ा और समझ लिया, और फिर जब कोई भ्रम ही नहीं है, आपको प्रश्न समझ में आ गया है, तो उसके अनुकूल आप उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि सच बात यह है कि प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया ही नहीं है। तो जब प्रश्न ही गलत समझ में आया है, या यूं कह लीजिए कि सही सही समझ में नहीं आया है, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप उत्तर सही सही लिख रहे होंगे। जो सही उत्तर हो सकता है उसके आसपास तो आप लिख रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि प्रश्न में हाथी की बात कही गई थी और आपको घोड़ा समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं होता है। आसपास ही समझ में आता है लेकिन एग्जैक्ट समझ में नहीं आता। और प्रश्न क्यों समझ में नहीं आते हैं, उसका रीजन होता है हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि हम सब इससे पहले जिस तरह की पढ़ाई कर चुके होते हैं और पढ़ाई करने के बाद जिस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वहां हम सब यही कर रहे होते हैं, तो वो आदत बनी हुई है और वही आदत अपने आप को यहां रिपीट कर रही होती है। जबकि हम ये बात भूल जाते हैं कि पढ़ाई नामक तत्व जो है वो तो वही है लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं है। हम एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसके अपने कुछ चैलेंजेस होंगे। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि हम पहले प्रश्न को तो समझें। मैंने आप लोगों से कल यह रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज यदि हो सके तो आप उन दोनों प्रश्नों को देखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी तरफ से कुछ कोशिश भी कीजिएगा लिखने के, पॉइंट्स निकालने के कि आप इनमें क्या लिखना चाहेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इसके बारे में कोई तकलीफ उठाई होगी, लेकिन दोस्तों जिस तरह के आपके अभ्यास होंगे, जिस तरह के आपकी मेहनत होगी, डेफिनेटली परिणाम तो उसी के अनुकूल ही मिलेंगे। वह मैं आप लोगों के अपने ऊपर छोड़ता हूं और उस पर मेरा अपना कोई नियंत्रण भी नहीं है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है। पहली बात, ये जो प्रश्न पूछा जाएगा याद रखिए, ये आपके जनरल स्टडीज के 4th पेपर में पूछा जाएगा, जो एथिक्स का पेपर है। सामान्य तौर पर शॉर्ट फॉर्म में अब उसे एथिक्स का पेपर कहा जाने लगा है। प्राकृतिक खेती अगर शुरू में 2 शब्द है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, और इसके बारे में आप भी क्लियर होंगे। तो ये 4th पेपर का प्रश्न है, एथिक्स का प्रश्न है, ठीक है। नो डाउट कि यह भी शायद आपके समझ में आ गया होगा कि इसका संबंध, अगर हम टॉपिक इसमें से ढूंढें तो वो सेवा भावना से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और ये भी बकायदे आपके सिलेबस में है। होता क्या है कि जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में आता है कि अरे ये तो सेवा भाव के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, और हमसे गलती कहां होती है कि हम सेवा भाव के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। बस यहां हम चूक जाते हैं। अब हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है प्राकृतिक खेती करना धरती मां की सेवा करना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था, प्राकृतिक खेती करना धरती मां की सेवा करना है। इस कथन के प्रकाश में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है, जो वर्ड है, जहां यूं कह लीजिए कि आपको घेरने की कोशिश की जा रही है या यूं कह लीजिए कि आपको चेक करने की कोशिश की जा रही है, वो यही शब्द है। इस कथन के प्रकाश में सेवा भाव को परिभाषित कीजिए। जब हम सीधे तौर पर इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सेवा भाव की परिभाषा देना है या हमें यह बताना है कि सेवा भाव क्या होता है। लेकिन यहां जो बात कही गई है, एग्जैक्ट जो बात कही जा रही है, उस पर आपको गौर करना होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्राकृतिक खेती करना धरती मां की सेवा करना है। अब यहां सेवा को क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो आप धरती मां की सेवा कर रहे हैं। इसके प्रकाश में इसको केंद्र में रख करके सेवा भाव को परिभाषित कीजिए। ये नहीं कि सेवा भाव के बारे में आपने क्या पढ़ा है या आपके अपने क्या विचार हैं उसे लिखिए, नॉट एट ऑल। इस कथन से क्या प्रकट हो रहा है, कौन सा अर्थ निकल रहा है, कौन सा भाव हो रहा है, इससे सेवा भाव की क्या परिभाषा सामने आ रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। और सिर्फ 100 शब्द लिखने हैं। तो पहली बात कि आपको उस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा या उस शब्द की खोज करनी पड़ेगी जो इस स्टेटमेंट के केंद्र में है। आप खोज कीजिए, मैं कल हो सका तो इस पर बात करूंगा। मैं अभी आपको ही होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज डिस्कवर इट, उसे खोजिए। और खोजने के बाद उस पर एक परिभाषा तैयार कर लीजिए अपनी तरफ से, और परिभाषा तैयार करने के बाद उसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, उसे डिस्क्राइब कर दीजिए, उसकी व्याख्या कर दीजिए, आपका बहुत ही सटीक उत्तर बन जाएगा। लेकिन प्लीज ऐसा कीजिए। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं। इसके लिए नवी मुंबई के हैं सौरभ यादव, उन्होंने एडमिशन लिया है। तो सौरभ जी, आपका एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक दोस्त हैं प्रभात कृष्ण गौड़ अलीगढ़ से। प्रभात, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।